रूप गोस्वामी के शब्दों में वर्णन सुने, इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाप्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, कि जीव अवस्था में ही प्रकृतिस्थ जिसका अर्थ प्रकृतिस्थ मतलब प्रकृति में रहता है, अर्थात इसी जगत में रहता है, अर्थात इसी देह में रहता है, और प्रकृतिस्थ मतलब जिस परिस्थिति में उस जीव को रखा जाता है, जिस वातावरण उस में रहता है, परंतु फिर भी निर्गुणत्वात जलारकवत रहकर भी नहीं के समान है, मतलब उसको प्रभाव किंचित मात्र भी ना बाह्य जगत का, ना बाह्य परिस्थिति का, ना इस बाह्य शरीर का प्रभाव उन पर होता है। किसी प्रकार का जो द्वंद्व है, सुखे दुखे समो कृत्वा लाभा लाभो जया जय, चाहे सुख हो दुख हो, समस्त अवस्थाओं में जो सम रहता है, भगवान को प्रेम को प्राप्त करने के पूर्व ही है प्रथम सोपान है, और इस सोपान में जब तक तो कोई उत्तीर्ण न हो तब तक प्रेम की संभावना ही नहीं है। जिसे कहा जाता है समता सब संसार सो ममता नित्य विहार से, कहां से आवाज आ रही? तो उस किस प्रकार से उस अवस्था को, जिसको भगवान गीता में भी कई स्थान पर कहे, त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, कि तीन गुणों से ऊपर, तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना इसी वर्तमान अवस्था में आवश्यक है। जिस प्रकार से परम पूज्य श्री राधानाथ महाराज के वचन में भी कहते भगवान की अनुभूति करना, भगवान को प्राप्त करना, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, जिन्होंने भगवान को का अनुभव किया है भगवान की कृपा का, इसी वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान शरीर में रहकर ही किया है, तत्पश्चात हाँ भगवान को प्राप्त करना वह दूसरी बात है, परंतु प्रथम बात यही कि इसी वर्तमान शरीर में। तो कल भी उसी विषय पर हम प्रारंभ में भी कहे थे कि यह समस्त भ्रांत धारणाएं जो होती है भक्ति करते हैं कि कलयुग है, कलयुग में भगवान प्राप्त नहीं किए जा सकते। दूसरा धारणा है कि हम बद्ध जीव है, हम पतित है, भगवान की प्राप्ति हमारे किसी भी योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। भगवान की प्राप्ति यदि हमारी योग्यता पर निर्भर करती तो फिर उसे अहेतु की नहीं कहा जाता। जब हम कहते अहेतु की मतलब हमारा कोई हेतु, हमारे कोई सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को बाध्य कर सके। तो कोई भी पात्रता वास्ते कोई भी अधिकार की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से कल भी यह दृष्टांत हम कहे थे कि जो बालक है, बालक को अपने माँ का प्रेम को प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल वह यह स्वीकार कर ले कि मैं केवल और केवल अपनी माँ का हूं तो सहज उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा अन्य कोई भी गुण की अपेक्षा उससे नहीं की जाती। बालक बहुत ही पूरा मिट्टी से भरा हुआ हो, कीचड़ से भरा हुआ हो, मलमूत्र से भरा हुआ हो, वस्त्र से पूर्ण हो, निर्वस्त्र हो, स्वस्थ अवस्था में या रुग्ण अवस्था में, कैसा भी बालक क्यों ना हो, मां के लिए अपना बालक अपना ही होता है, और सभी अवस्थाओं में वह बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लेती है। शर्त केवल इतनी होनी चाहिए कि बालक में यह चाह हो कि मैं केवल मां का हूं और मां को ही प्राप्त करना चाहता हूं। तो वास्तविक देखा जैसे इस एक गुण के लिए ही अन्य समस्त साधन है, इस तरह की निर्भरता के लिए। तो कल हम कुछ 10 बातों को पद्म पुराण में भी दिया गया और 10 बातें अन्य जो हमने श्रवण की है, कैसे यह स्थिति वर्तमान में आ जाए कि संसार में रहकर पद्म पत्र इवाम वसा, कि संसार का प्रभाव हम पे न हो, संसार के गुणों का प्रभाव न हो। तो उसके लिए प्रथम बात हमने कहते कि सबसे पहले वही व्यक्ति की चेतना सदैव उन्नत रह सकती है जिसे श्रील प्रभुपाद कहते स्टे हाई फॉर एवर, जो सदैव ध्यान रखे कि 24 घंटे उसकी जिह्वा कौन सा कार्य करती है, जिसको देव कीप अ वॉच ऑन योर टंग कहते हैं, कि आपकी जिह्वा जितना व्यवहार के लिए आवश्यक है उसके अलावा। कल मैं किसी चर्चा कर रहा था, कथा है उपरांत भी, तो उन्होंने भी इस बात कहा, प्रभु जी इसको मराठी में कहते ना कल तो पण वळत नहीं, कहते तो बहुत अच्छा है, बहुत सही बात कही, प्रवचन जैसे विराम हुआ निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, समस्या क्या है कि उसके बाद एप्लीकेशन नहीं हो पाता है उनका। जैसे लगभग कुछ दिनों पूर्व मैं नागपुर में किसी वक्त से भेंट कर रहा था, तो उन्हें इस बात को कहा कि प्रभु जी आपने जब बताया और जिस समय बताया तो ऐसा लगा कि बस यही करना ही चाहिए। तो वही बात फिर इसके पूर्व भी हम चर्चा में जब किए थे कि जितनी भी कथा है, जितने सत्संग है, जितने वचन हम सुनते हैं भक्तों के मुख से, साधु गुरु शास्त्र की वाणी जो सुनते हैं, उसको धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है प्रमुख रूप से जब ब्रह्म मुहूर्त में, जिसे कहा जाता है शास्त्रीय शब्दों कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्माकार वृत्ति जब हो जाए। ब्रह्म मतलब यहां पर कोई मायावाद की चर्चा नहीं की, ब्रह्माकार मतलब कृष्ण मय पूर्णता जब हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का प्रत्येक क्षण जब वहां देह का विस्मरण करके आत्मा के स्तर पर रहने का संपूर्ण प्रयास जब करे, मतलब देह का विस्मरण जैसे सबसे पहले हमने वो पिछले बार जो चर्चा की थी ब्रह्म मुहूर्त या नित्रा समस्त पुण्यशय कारिणी, कि ब्रह्म मुहूर्त काल में श्रुति मंत्र में कहा गया है या निद्रा, जो निद्रा को स्वीकार कर ले समस्त पुण्यशय कारिणी, संपूर्ण जीवन में जितनी तपस्या, संपूर्ण जीवन के जितने उपवास व्रत अनुष्ठान आदि है समस्त पुण्य तुरंत क्षय हो जाते हैं यदि उस अवस्था उस काल में वह केवल सो जाए। तो किसी ने मुझे और एक कथा का श्रवण कर, उसमें कहा कि 4 बजे के बाद यदि कोई उठता है मतलब उसको साधु की गणना में नहीं गिना जाता है, वैष्णव समाज में 4 के बाद को उठ जाए, कई ऐसा अन्य कई स्थानों पर देखा गया, क्योंकि बिना साधन के साधु ये शब्द नहीं होता है, जो साध्य के लिए साधन में तत्पर हो उसे साधु कहा जाता है। तो साधु शब्द का तो प्रश्न ही नहीं है, और उसके आगे फिर और कहा जाए साधु में भी कोई ब्रह्मचर्य दोनों के लिए है, वैसे आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में वो भी ब्रह्मचर्य है, और श्री रूपात के जो गृहस्थ जीवन में वह भी गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ प्रमुख रूप से ब्रह्म अर्थात भगवान में जिसका चित्त पूर्णतः लगा हो, और जो देहात्म बुद्धि से ऊपर हो उसको ब्रह्मचर्य कहा गया। तो उसकी चर्चा हम पिछले बार किए थे, उसमें प्रमुख बात जो मुझे स्मरण हो रही थी जब कल किसी ने इस बात को कहा, तो जितना शास्त्र के हम वचन सुनते हैं, जितने प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन की जितने लाइनें सुनते हैं, प्रवचन के जितने शब्दों को सुनते हैं, हर शब्द हमारे व्यक्तिगत जीवन में जीवंत रूप से कार्य करने लगता है जब ब्रह्म मुहूर्त की साधना जीवन में हो, अन्यथा वहां केवल कागज के अक्षर बन के रह जाते हैं या फिर मोबाइल में हो तो MP3 रिकॉर्डिंग बन के रह जाता है। एक तो ऑडियो फॉर्मेट में रहेंगे या अक्षर रूप में है कागज पर रहेगा। जैसे कई बार आप कुछ मंदिरों में जाते तो कहते हैं ना उसे क्या जागृत देव कहते हैं। जागृत देव मतलब बाकी मरे हुए, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। जैसे वो पीके में बताते ना, पीके में कहते कि छोटा भगवान मतलब छोटी बात सुनता है, बड़े भगवान बड़ी बात सुनते हैं। किसी कांग्रेगेशन वक्त से मैं चर्चा कर रहा था, बोले कि हमने वो ड्यूटीज लाए, पहले छोटे वाले थे, अब बड़े वालों के लिए कुछ ज्यादा नियम रहेंगे। मतलब छोटे वाले भी भगवान ही थे, बड़े भी भगवान ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु इस तरह की जो धारणा रहती है, तो जागृत देव मतलब कि जब जिस श्री विग्रह की आप आराधना कर रहे, जिस श्री विग्रह का दर्शन कर रहे, जिस श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं, और उस भगवान के कुछ अनुभूति जब होने लगे, भगवान के साथ आदान प्रदान की जब अनुभूति होने लगी है, तो उसे हम तुरंत कहते कि जागृत देव। वैसे ही भक्ति के समस्त अंग जागृत लगते हैं, भागवत का प्रत्येक अक्षर, भागवत का शब्द, भागवत के जो पन्ने हैं, वो हमारे जीवन में जागृत होने लगते हैं। मीन्स दे ऑल्सो स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग विद यू, जिसको और सरल शब्द में कहा जाता है, जिस शब्द को सुनेंगे, जिस वाक्य को सुनेंगे, तुरंत वह आपके साथ आदान प्रदान करने लगते हैं। जब आपका साधन अत्यंत प्रबल हो, तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णतः से आप साधु गुरु का आश्रय लेकर भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, और किंचित मात्र भी इस ब्रह्म मुहूर्त में अन्य देह का कार्य कम से कम हो। यहां तक मुझे स्मरण है लगभग 20 वर्ष हो गए, 2000 में, लगभग 2000 में जब आरवड़े में था, वहां पर हम धर्मराजपुर के साथ में, तो वहां हम देखे थे बहुत काफी नियमों को, कठोर अनुशासन को रखते थे, और कहते कि सुबह का समय जितना कम से कम शरीर के लिए हो, मतलब विषय से शौच स्नान आदि जो क्रियाएं की जाती है उसके विषय में कह रहे थे कि बहुत कम से कम होनी चाहिए। हाँ, अन्य समय जैसे कभी कभी होता है दिन में आप स्नान करते हैं तो बहुत अधिक साबुन का प्रयोग किया जा रहा है, फिर धीरे धीरे धोती पहन रहे, धीरे धीरे तिलक धारण कर रहे, फिर धीरे से अपने शिखा वगैरह बांध रहे, अन्य जो कार्य करते हैं। तो देखिए प्रातः काल के समय जितना कम समय दिया जाए, ब्रह्म मुहूर्त का शब्द का अर्थ हम चर्चा कर रहे थे, तो वहां की वो प्रत्येक एक एक सेकंड, मतलब जिसको आप कह सकते एक एक सेकंड उस समय का कोहिनूर हीरे के समान है। उसके प्रत्येक क्षण में आप जितने सतर्क रहे, इसलिए अधिकांश तरह से देखा गया कि कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जब प्रारंभ होता है तब से साधन प्रारंभ होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने से निद्रा से जागना समथिंग बेटर देन नथिंग, जिसको कह सकते हैं क्या कम से 4 बजे उठ तो जाओ कहते हैं। परंतु अच्छा तो वह हो कि ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व जो भी नित्य कर्म होते हैं वह से अगर निवृत्त हो जाए और उसमें साधन प्रारंभ हो जाना चाहिए। और फिर इसलिए देखा जाता है जैसे मंदिरों में आप जब हम आते हैं, देखिए मंगला आरती का समय, मंगला आरती में देखिए संपूर्ण लाइट्स बंद रहते हैं, फिर एक ही लाइट फोकस चालू रहता है जो सीधा भगवान के ऊपर हो। क्यों? तो इसका भी कारण है कि कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त जिसको जैसे हम बाहर की जगत में आप सुनते होंगे कि सुबह उठते बराबर किसका मुख देख लिया है ना, कि प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त में जिस रूप को, जिस शब्द को, जिस गंध को, ये जो पंच रस है तन्मात्रा जिसे कहा गया, जिसके संपर्क में आएंगे संपूर्ण दिवस चेतना में उसी का वर्चस्व रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रयास इतना होना चाहिए कि कोई भी संसार का रूप न दिखे, संसार को शब्द कर्ण में प्रवेश न करे और संसार की गंध न प्रवेश करे, जिसको परम पूज्य शचिनंदन महाराज अपने शब्दों में कहते हैं सेक्रेट स्पेस। सेक्रेट स्पेस मतलब कि पवित्र स्थान, उनको बोलो सेमिनार से सेक्रेट स्पेस, उसके उसमें वो कहते हैं, जैसे अब रुक्मिणी द्वारकाधीश जी का दर्शन करते जो मधुपति प्रभु ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, तो अब देखेंगे जब श्रृंगार करने जब श्रृंगार दर्शन जब खुलता है, देखें वो भगवान के मंदिर के वेद एकदम स्वच्छ रखा जाता है। भगवान जहां पर विराजमान है उस स्थान में संसार का कोई भी कचरा वहां पर प्रवेश न करने पाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। संसार का कलमश, क्योंकि भगवान का वह स्थान है। तो वैसे ही वह प्रातः काल मतलब भगवान का काल कहा जाता है, उसे संसार प्रवेश न कर सके उस समय, यह ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुझे किसने कहा था कि कोशिश करना चाहिए कि 6:30 के पहले किसी का चेहरा मत देखो भगवान को छोड़कर, मतलब मैं दृष्टि दोष के विषय में जब चर्चा कर रहा था तो बोले कि एक कार्य करो, उस ब्रह्म मुहूर्त में कोई दूसरा रूप ना आए आंखों में, तो दृष्टि दोष अपने आप निकलने लगता है। इसे हम जैसे लाइट, तो इस तरह जाता है, तो ऐसा साधन फिर करने के उपरांत समस्त भक्ति के अंग जीवंत होने लगते हैं। मतलब हर प्रवचन आपके जीवन में एक विशिष्ट परिवर्तन नहीं लाएगा, हर प्रवचन के हर वाक्य आपके जीवन में परिवर्तन लाने लगेंगे। वो तुरंत जिसको कहते हैं आप सिम जैसे मोबाइल में डालने पर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो भक्ति के अंग एकदम सक्रिय होने लगते हैं हमारे जीवन में जब ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्माकार वृत्ति मतलब कृष्णमय आप रहते हैं, और वह कृष्णमय होने के लिए ही विशुद्ध से क्या कहते हैं, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम ध्यान मूलम गुरुर पदम, कि जब गुरु का आश्रय लिया जाता है, कुछ भक्त कई भक्त अपने प्रतिक्रिया पिछले एक महीने से बतलाए थे, हम सभी का सौभाग्य है कि महाराज श्री का दर्शन प्रातः काल हो रहा है। कुछ भक्तों से मुझे आरोह में था चर्चा की, तो बोले कि प्रभु जी तो अलग वाइब्रेशंस अब लग रही है, कैसे उसको हिंदी में कैसे बताएं, मतलब एक अलग कुछ शक्ति का अनुभव हो रहा है। परसों ही मैं किनसे पद्माली प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु जी इट्स मिरेकल, बोले कि चमत्कार हो गया। जितने भक्त शुभ से, तो वहां पर मैं जब चर्चा कर रहा था आरोण में, तो इस बात पर चर्चा हो रही थी कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम ध्यान मूलम गुरुर पदम, और क्या है दो बात प्रश्लोक भूल गया मैं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा और एक चीज है, चारों में गुरु है। तो उसमें मैं इस बात पर चर्चा करता हूं, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, कि जब आप और ध्यान मूलम गुरुर पदम, गुरु मतलब श्री गुरु के चरणों का जब आप स्मरण करते, श्री गुरु का दर्शन करते हैं, गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा जब पूर्ण होती है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि सहज भगवान हृदय में प्रकट होने लगते हैं। मतलब एक अच्छा कल एक सुबह एक वाक्य सुना था कि आप जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को जब नाम जप करते हैं, जैसे नवदीप धाम महात्म्य में भक्तों ठाकुर के जो गौर नित्यानंद डाके, मतलब गौर नित्यान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के नाम को पुकारता है, कृष्ण प्रेम अन्वेषे थाके, कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ने लगता है जो केवल चैतन्य नित्यानंद को नाम को पुकारता है। तो वहां पर कहते हैं कि संसार की जब कामनाएं आपके मन में भरी हो, संसार की इच्छाओं से जब मन प्रदूषित हो, उसका एक लक्षण होगा आप पुकार नहीं पाएंगे, अलग अंतर होता है, केवल शब्दों का उच्चारण ही उसको पुकार नहीं कही जाती है। पुकार मतलब जो कोई व्यक्ति पुकारता है, जैसे भक्ति सावंत महाराज जो कथा सुना रहे थे आरोड़े में जब क्लास दिए, छोटा सा बालक था, छोटा सा बालक जैसे कल आपने देखा ना कि वो निमाई शायद गिर गया था, तुरंत चिल्ला उठा तो उनके माता जी दौड़ पड़े, तो वहां बताया जाता कि एक बालक था जो खेला खेले अचानक धड़ाम से गिर पड़ा, जोर से चीखा और इतना जोर से माँ का नाम लेके रोने लगा, क्रंदन करने लगा, सभी घर के काम छोड़ के माँ दौड़ के गई वहां पे, और माँ दौड़ के सीधा उठा लिया, देखा बच्चा बहुत जोर जोर से, तुरंत एक मिठाई थी पेड़ा था उसके हाथ में दे दिया, पेड़ा खा ले पेड़ा खा ले, बच्चा शांत हो गया। परंतु बच्चा शांत हुआ, परंतु बच्चे के दिमाग में गलत कुछ और विचार आ गए। क्या विचार है? अरे रोने से पेड़ा मिलता है, रोएंगे तो पेड़ा मिलेगा। तो अब माँ जब चली गई रसोई में कार्य करने लगी, तो बालक अब जोर जोर से और रोने लगा, पर अब माँ नहीं आई। अब एक बार रोया तो माँ नहीं आई, तो फिर बालक ने अपना वॉल्यूम और थोड़ा और डबल बढ़ा दिया और जोर जोर से रोने लगा, फिर भी माँ नहीं आ रही। तीन बार चार बहुत ज्यादा रोने लगा, फिर बहुत धीरे से माँ आई और माँ ने फिर पेड़ हाथ में रखा। तो फिर बालक ने पूछ लिया कि पिछले बार मैं जब रोया था दौड़ कर आ गई थी, अभी मैंने तो चार वॉल्यूम में क्रंदन किया, परंतु इतना देर क्यों लगी आने में? तो बोले उस समय तो मेरे लिए रो रहे थे, अभी पेड़े के लिए रो रहे थे, तंतर हो गया। वो जो रोना था अलग था, ये रोना अलग। तो वहां पर कहा जाता है कि जब आप निर्वासनिक हो जाए, निर्वासनिक मतलब जब मन में कोई वासना न हो और उस भावना में जब रहते तभी आप पुकार सकते हैं। जब मन में संसार भरा हो, आप देखें आपको लाइक किस क्या कहते हैं, वी डोंट फील लाइक कॉलिंग आउट कृष्णा, हमको लगता नहीं भगवान क्या जरूरत है। परंतु जब संसार की कामनाओं से जब मन, संसार की कामनाएं जब मन से निकल जाती है, तब तुरंत जीव में ये कृष्ण का आवाहन की प्रवृत्ति आती है। तो बहुत सुंदर, कल एक वाक्य मैं सुन रहा था कि जब आप गुरु का आश्रय लेते तभी मन निर्वासनिक हो सकता है। जहार निकटे गेले पापे दूरे जाए, ए मोनो दयाल प्रभु, मतलब गुरु साधु का आश्रय लेने से मन में संसार के विचार नहीं रहते हैं, और जैसे संसार के विचार निकल जाते उसी समय जीव में आवाहन की प्रवृत्ति आती है, जीव पुकारता है, तब शीघ्र ही कृष्ण उस प्रार्थना को तुरंत उत्तर देते हैं। तो वहां ध्यान मूलम गुरुर पदम, इस बात पर कि जैसे ही आप गुरु का दर्शन करते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते, गुरु के चरणों का दर्शन करते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पूर्व जब मैं आरण में जाने के पहले भी कुछ वक्त चर्चा चल रही थी, तो कुछ वक्त कहते प्रभु हमने तो गुरु से ही सुना है, हमारे गुरु महाराज से, गुरु महाराज कहते कि नाम जप के समय मोबाइल साथ में न रखे, लगभग कुछ वर्ष पूर्व ही महाराज के प्रवचन में से, और वही गुरु अभी कह रहे कि मोबाइल रखो। सुनने वाले गुरु अगर आपको कहेंगे मोबाइल के सामने डांस करो, वो करोगे तो आपको कृष्ण भी मिल जाएंगे। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, इस बात पर ने कहा कि मंत्र मूलम मतलब, मंत्र मूलम स्पष्ट रूप से कहा जाए नाम की सिद्धि, नाम की सिद्धि गुरु के वाणी पर यदि श्रद्धा हो जाए तो नाम सिद्ध होने लगता है। और गुरु के वाणी पर अगर श्रद्धा न हो तो नाम बहुत दीर्घ काल तक और बहुत अधिक संख्या में किया जाए तो सिद्ध नहीं होता है। तो आप उन्होंने कहा कि बहुत दीर्घ काल तक आप जब नाम जप करेंगे, बहुत अधिक संख्या में जब नाम जप करेंगे, नाम जप करने से नाम आपका शुद्ध होने लगेगा। नाम जब शुद्ध होगा तो उसका पहला परिणाम होंगे आपकी गुरु में श्रद्धा तब जागृत होंगी, और तब गुरु में श्रद्धा जागृत तो घूम फिर के वहीं पर आना है। और जब गुरु में श्रद्धा आ जाएंगी कि गुरु मतलब साक्षात भगवान, साक्षात धरित्व ने समस्त साक्षात भगवान के स्वरूप है, यह श्रद्धा के साथ जब नाम आप उच्चारण करेंगे वह प्रेम को उदित करता है। महापुरुष ने कहा मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम और ध्यान मूलम गुरुर पदम। ध्यान मूलम गुरुर पदम मतलब कि गुरु पहले प्रकट होता है फिर भगवत रूप प्रकट होता है हृदय में। तो ठीक है, मैं बाकी तो 9 पॉइंट रह जाएंगे, ठीक है मैं कह देता हूं अभी। तो पहला हमने कहा था कि वाणी इस तरह से जब नाम जप किया जाता है गुरु का आश्रय लेके ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर यह बात को ध्यान रखिए कि निरंतर जीव से नाम चलता रहे, यह पहला चीज। फिर दूसरा वहां पर कहा गया कि जब आप अच्छी तरह से श्रवण और कीर्तन में पूरा समय यदि लगे रहे, आपका 24 घंटे का प्रत्येक क्षण केवल सोने को छोड़ के, अन्य जितना समय वह आध्यात्मिक शब्द आपके जीवन में चलता रहे, चाहे श्रवण के रूप में हो, चाहे कीर्तन के रूप में हो, चाहे नाम के रूप में हो, चाहे कथा के रूप में हो, वह यदि निरंतर चलता रहेगा तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, आपका श्रवण पूर्ण तभी कहलाता है जब आपके मुख से कीर्तन निकलने लगे, मतलब आप भगवान की महिमा को दूसरों को कहने लगे, मतलब समझना जी कि आप श्रवण योग्य हैं। आप श्रवण किए परंतु आपको कोई तुरंत कह दे कि कुछ बोलिए प्रभु जी, तो ऐसे एकदम बैल की तरह बैठे, क्या बोलो, कुछ बोलिए भगवान करूं, क्या बोलो, मतलब अभी तक उतना श्रवण अंदर घुसा नहीं है। श्रवण का परिणाम होगा कीर्तन हो, और श्रवण कीर्तन दोनों पूर्ण जब हो तो उसका सहज एक परिणाम होता है कि स्वाभाविक और सहज स्मरण होने लगता है। तो दूसरी बात यहां पर वो दस में से दूसरी बात कही गई है कि आप जितना व्यवहार करते हैं, व्यवहार के पश्चात पहला मैंने कहा था कीप अ वॉच ऑन योर वर्ड्स, दूसरा कहा गया कीप अ वॉच ऑन योर थॉट्स, मतलब मन में कौन से विचार, मन में कौन से चिंतन चल रहे हैं। तो वहां कहते कि आप व्यवहार जितना करते, व्यवहार करते समय कभी कुछ काम कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक काम करना भी पड़ता है, समझो मनोज रूप ऑपरेशन कर रहे तो ऑपरेशन में ध्यान रखना पड़ेगा ना, उस समय अगर वो भक्ति भाव में डूब गए तो सामने वाले की समाधि लग जाएंगी तो अपनी समाधि से थोड़ा बाहर निकलना आवश्यक है। हमारे रूप चरण पर बोलते हैं इसीलिए संसार में व्यवहार सेवा मतलब क्या है, तो बोले अपने भजन का बलिदान करने पर आप संसार की सेवा कर सकते हैं, जब तक भजन का बलिदान न करो तब तक संसार, क्योंकि भजन कुछ समय रुक जाता है, परंतु वह सेवा जो भगवान के लिए की जाए तो उसको भी भजन का अंग ही माना गया है, परंतु उसके उपरांत कहा जाता है। अब समस्या क्या, जैसे अब कल ही मेरा अनुभव था, कल भागवतम क्लास से, भागवतम क्लास के बाद हम बाहर व्यास से उठ गए, तुरंत बाहर गए, फिर तुरंत बाहर गए तो हम रथ यात्रा की चर्चा चलने लगी। संसार के व्यवहार में जैसे आप लग जाते हैं, चाहे सेवा के नाम से क्यों हो, उसका एक प्रभाव होता है कि तुरंत चित्त भगवान से थोड़ा हटने लगता है। इसीलिए साधक जब धीरे धीरे दक्ष होने लगता है तो उसको कहा गया कि यह ध्यान रखे कि जितना समय आप व्यवहार के लिए बातचीत कर रहे, कुछ सेवा कर, उसके उपरांत बचा उस समय में आप चिंतन का अभ्यास कितना करते हैं, मतलब कितना भगवान का स्मरण हो रहा है। तो श्रवण कीर्तन यदि चलते रहेगा तो स्वाभाविक स्मरण होते रहता है, और उसके साथ में भी श्रवण कीर्तन के साथ में भी कितना मन आपका भगवान के विषय में स्मरण करता है, इसको कहा गया मन के वृत्ति पर ध्यान रखो। यहां पर कहा गया मन कौन से विचार कर रहा है। तीसरा कहा गया फिर वाणी के ऊपर, पहला पॉइंट था, दूसरा था मन के ऊपर, तीसरा, वैसे इसको रिवर्स में रख सकते थे, तीसरे को दूसरे में डाल सकते थे, तीसरा है कीप द वॉच ऑन योर सेंसेस। इसको मैं अपना शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला बनाया हूं, ये तो उसमें नहीं दिया था, कीप अ वॉच ऑन योर वर्ड्स, आपकी जिह्वा क्या कार्य कर रही है, दूसरा आपकी मन क्या चिंतन कर रहा है, तीसरा कहा गया है कि गुरु साधु शास्त्र के अनुकूल इंद्रिया चलनी चाहिए आपकी। तो प्रत्येक इंद्रियों को आप बार बार चेक करना चाहिए, जो भी इंद्रिया जिन कार्य को कर रही है शास्त्र सम्मत कार्य है, गुरु के आशीर्वाद से युक्त यह कार्य है या इंद्रिय के कार्य है कुछ अन्य दिशा में जा रहे हैं, तो चाहे जीवा हो तो कृष्ण प्रसाद ले, दृष्टि, दृष्टि का अधिक बताएगा, आज सुबह मैं इस बात को विचार कर रहा था, तीनों तीन फिल्टर मशीन जो हमने कही थी इसके पहले भी कि तो जिह्वा का कहा गया, कान का कहा गया, आंख, ये तीन पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए, पर तीनों में से कहा जाता है कि दृष्टि जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसकी गहराई बहुत अधिक समय तक रहती है। शब्द अन्न का दोष जो है, जैसे चार दिन पहले का अनुभव में कुछ वक्तों से कहा, चार दिन पहले हम कहीं गए और हालांकि ले नहीं आता, एक जगह मुझे लेना पड़ा, उसका असर वो भी तीन दिन तक अभी थोड़ा बहुत है ही, हालांकि कहने के लिए मैं भी प्रवचन में कह दिया एक बार कि अन्न दोष से निकलना है तो क्या करना चाहिए, अगर गलत कुछ अन्न चले गया मुंह में तो तुरंत जगन्नाथ का भात खा लेना चाहिए। तो तो खाया दटरा है तो क्या है ना, उससे कुछ तो थोड़ा अंतर पड़ा, परंतु पता चल जाता है कि जैसे अगर अन्न कोई भक्त के हाथ का न हो, कोई अभक्त के हाथ का हो, पवित्र न हो या पवित्र भावना से न ले, तो उसका प्रभाव जल्दी रहता है, तो कुछ दिन तो रहता है, अधिक अधिक ऐसे 10 दिन या 15 दिन तक अन्न का प्रभाव चलता है। कभी कभी बहुत ज्यादा है, किसी से तामसिक अन्न को ले लिया तो फिर 1-2 महीना भी रह सकता है, 1-2 महीने का भजन एकदम ब्लॉक हो जाता है। जो अधिक करते हैं उनको, जो नॉर्मल करते हैं उनको पता चलता है। मैं किसी को बोला कि प्रभु जी बाकियों को कभी कभी ऐसा देखा कि कुछ लोग तो कुछ भी खा लेते, कुछ भी देख लेते, सब फेसबुक व्हाट्सएप सब चलते रहता है, फिर मंगला आरती में भी दिखते हैं और नॉर्मल साधना भी नॉर्मल दिखाई देती है, उनमें उतना दिखाई नहीं देता परिवर्तन क्यों? तो बोले कि साधन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक साधन होता है कि जिसमें साध्य नहीं है, तो वैसा साधन कभी बाधित नहीं होगा। उन्होंने कहा मतलब साधना कर रहे हैं पर कृष्णा वगैरह नहीं चाहिए, इस्कॉन में आ गए ना दीक्षा हो गई बस, उसके बाद वो विचार नहीं कि सही में कृष्ण चाहिए, परंतु जो कृष्ण के लिए तत्पर होगा तो उसको हर स्टेप पे झटके पड़ने वाले हैं, उसका तुरंत साधन भी बिगड़ता हुआ दिखेगा, थोड़ा भी कुछ गलत दृष्टि हो गई तो अन्न का और शब्द का भी प्रभाव रहता है। आप जो कानों से सुनते हैं, आप किसी ने गाली दे दी तो तुरंत प्रभाव होता है, परंतु दृष्टि का प्रभाव बहुत दीर्घ काल तक रहता है, वो निकलता नहीं है। और दृष्टि से आपने संसार को देख लिया है, संसार के रूप को देख लिया, तो बहुत समय लग जाएगा और आप साधन भी करेंगे परंतु रस अनुभव नहीं होगा, प्रेम की अनुभूति नहीं होगी यदि दृष्टि से संसार को आपने देखा हो तो। मतलब आप साधन भक्ति करेंगे, भक्ति के अंग करेंगे, परंतु प्रेम की अनुभूति नहीं होती यदि दृष्टि अपवित्र हो जाए तो। तो इसीलिए ये तीसरा बात यहां बताया कि बहुत सतर्क रहे कि इंद्रियों को सदैव जैसे घोड़े की लगाम को कैसे बांध के रखते हैं, एकदम नियंत्रण में रखते, वैसे ही इंद्रिया गलत दिशा में चेष्टा न करें। गुरु साधु शास्त्र के अनुकूल इंद्रियों की चेष्टा, मतलब धर्म सम्मत कार्य हो इसमें, मतलब जैसे घर गृहस्थी में, तो घर गृहस्थ यहां पर वो एक उदाहरण दिया था, जो घर गृहस्थी में रहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि सही मार्ग से धन उपार्जन करें, सतमार्ग से धन उपार्जन, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, भले कम हो। कभी कभी जब हम विचार करते कि थोड़ा गोलमाल कर देंगे तो क्या होगा, कम समय में अधिक धन उपार्जन होगा, अधिक धन उपार्जन हो गया तो फिर भक्ति के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। मगर वैसा यदि अशुद्ध अगर धन रहे, अशुद्ध वृत्ति से धन आए, तो वो तुरंत भक्ति को रोक देता है। जैसे वो पिछले बार एक कथा जो बताए थे कि एक संत जो वृंदावन के थे, उन्होंने किसी वैश्या के धन के अन्न को ग्रहण कर लिया जो साक्षात राधा गोविंद जी का राजभोग प्रसाद था, तो तुरंत मन में गलत विचार आ गया, सीधा भगवान को जाकर शिकायत कर ली। ऐसे पहुंचे वक्त थे कि शिक्षा करते थे, भगवान के प्रश्न के उत्तर भी देते थे। उन्होंने गोविंद जी कह दिया कि भले ही वैश्या का धन था परंतु अंततः आपके चरणों में अर्पित हो गया ना, और आपको राजभोग लगा था, तो आपका राजभोग खाने से मेरे मन में गलत विचार कैसे आया? तो गोविंद जी ने कहा कि राजभोग मैं हजम कर सकता हूं, तुम हजम नहीं कर सकते, तुम सूखी रोटी खाया करो क्योंकि तुम साधु हो, तो तुमको बहुत ज्यादा खाने का विचार नहीं करना चाहिए। तो यह इंद्रियों पर सदैव ध्यान रखे कि इंद्रिया, तो वाणी पर कहा गया, दूसरा मन पर कहा, तीसरा इंद्रिय पर कहा गया, चौथा कहा जाता है कि ठीक है मैं पढ़ ही लेता हूं, हर एक पर बोलूंगा तो समझ आए। अवस्था में आप सबसे गलत जो व्यवहार कर रहा है, आपको भावना नहीं आनी चाहिए, आपके जीवन में बाधा पहुंचा रहे, आपको कुछ अवरुद्ध, आपके जीवन में कुछ अवरोध ला रहे हैं, उसके प्रति भी मन में किंचित मात्र भी नकारात्मक विचार ना हो। जैसे आप देखते ना ईसा मसीह का दृष्टांत है, ईसा मसीह को जब वो मारने लगे तो उनके लिए प्रेम चाहिए, थोड़ा कठिन है चौथा वाला। और पांचवा फिर कहा गया है तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, कि प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक जीवन की परिस्थिति में श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करना, कि श्री कृष्ण की कृपा को देखना, कि भगवान निश्चित रूप से मेरे कुछ मंगल का विचार किए, ऐसा प्रत्येक परिस्थिति में अनुभव करना, या पांचवा, छठवा पुनः फिर वाणी के ऊपर ही लिखा गया, कभी भी कहते इसको रूखे वचन नहीं कहना, मतलब ऐसे शब्द जो किसी के मन को दुख पहुंचाए ऐसे शब्द कभी मुख से ना निकले। अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम चेत स्वाध्याय चे वांगमयम तपोच्यते। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इस बात को कहे, तो आप वाणी से ऐसा कुछ शब्द बोल जाए जो किसी के मन को दुख पहुंचाए तो फिर आपका प्रेम मार्ग का जो प्रगति है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए कभी ऐसे, और वो क्रुद्ध होना तो फिर भक्ति नष्ट करना ही है। जैसे कहते एक बार यदि आप क्रोधित हो गए, एक बार केवल आपने, मैं किसी गृहस्थ भक्त के घर में कुछ बहुत बड़ी समस्या चल रही थी तो बात सुन रहा था, तो उस घर में मतलब माता पिता है, बेटी है, बेटे, उनके बीच में बहुत बड़ा कलह हुआ, परंतु उनके घर के सास ससुर किसी को पता नहीं चला। तो मैं ऐसे ही फिर पता किया कि क्या हुआ कि आपके घर में बाकी जनों को सबको पता चल गया। बोले किसी को पता नहीं चला, क्यों? बोले कि वो बोलते भी आपस में है ना, तो फिर क्रोधित नहीं होके नहीं बोलते हैं इस तरह, मतलब एक दूसरे को प्रेम से समझाते हुए कहते हैं। वो कलह हुआ, मतभेद थे, परंतु फिर भी आवाज एक ने भी ऐसे ऊंची नहीं की। उनके घर में रहने वालों को पता नहीं चला, बाहर वालों को पता चला। तो दूसरी बात को हम इसके पहले भी कहे थे कि जैसे आप क्रुद्ध हो जाते, क्रोधित जैसे हुआ, मन में क्रोध आया, तो कहा जाता है कि एक बार क्रोध करने से एक महीने का भजन तुरंत जीरो हो जाता है। एक महीने का भजन पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाता है केवल एक बार क्रोध करने से। इसको इसलिए त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशम आत्मना, नरक के द्वार के रूप में भी भगवान रखे है। तो यह छह हुआ, सातवा, सात आठ नौ दस चार, यह सातवा कहा गया है। आंतरिक रूप से मन में ये कुछ प्रार्थनाओं को कहा गया कि मन में निरंतर इन भावों को बहुत ज्यादा स्मरण करते रहना चाहिए। कौन कौन से, मैं पढ़ लेता हूं एक एक पे, बाद में कभी भविष्य में। मैं केवल और केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। यह पहली बात वहां पे कही, मेरा कोई नहीं है इस जगत में और कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। पहली चीज कही कि मैं केवल और केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। यह बात निरंतर, जैसे मेरे तो किचन में भी है ना, उस किचन में जो टैग लगा हुआ है उसमें भी ये बात लिखी, तो कई बार तो उसको लिखकर भी रखते हैं, ऐसे स्टिकर भी मिलते हैं, उस स्टिकर को भी लगाया जाता है, तो उसमें ये लिखा जाता है कि मैं केवल, ये लाइन थी ना, मैं केवल और केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे अपने हैं। ये बात का स्मरण रखे, मेरा कोई भी इस जगत में नहीं है, कोई भी वस्तु मेरी नहीं है इस जगत की, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। और जितने संबंध इस जगत में है वो केवल और केवल श्री कृष्ण के कारण ही है। मतलब इस जगत में जैसे देखेंगे कि हाँ अनंत शेष प्रभु की, किस लिए बोल रहे हैं, संबंध किस लिए, श्री कृष्ण से संबंध है। कुछ समय पूर्व हम स्मरण भी कर रहे थे, यदि हम इस कृष्ण भावना में न रहे तो फिर शायद कुत्ता भी नहीं पूछेगा। एक वस्त्र है, एक परिधान है, एक वेशभूषा है, भले अंदर से क्या गंदगी किसी को पता नहीं है, अपना अंदर क्या है माल मसाला अपने को पता है, परंतु बाहर से कम श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक रूप धारण किया और उस रूप को देखकर ही लोग सत्कार दे रहे थे। तो जितने भी संबंध इस संसार में जुड़े हैं, जितना सत्कार है, जितना मान है, जितना कुछ मिला है, वो श्री कृष्ण के कारण मिला है और श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रदत्त है। तो मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई वस्तु नहीं है, जितने संबंध है श्री कृष्ण संबंधित है और मैं केवल श्री कृष्ण का हूं, श्री कृष्ण ही केवल मेरे अपने हैं। इसको पूरा दिन बार बार, जैसे हमारे हरिप्राण प्रभु को छोटा सा माला रखते थे ना पहले, उनको जो भक्ति आंग में आई थी पिछले साल कौंडिन्यपुर रिट्रीट के बाद, तो कुछ दिन तक वो रही माला, अभी शायद कहीं होंगी, पता नहीं कहीं कलौकर के अंदर चली गई होंगी। तो वो माला के ऊपर जिसको ऐसे 26-27 मणि वाली माला होती है, तो उस पर वो मैं एक तुच्छ हूं आत्मा श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं तुच्छ हूं आत्मा श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, वो एक मंत्र याद करता है। ऐसे ये भी कुछ मंत्र कहे जाते हैं। आठवां कहा जाता है कि कितनी भी भयंकर आपको विपत्ति जीवन में आए उसको केवल और केवल भगवान के समक्ष कहना चाहिए। मतलब जिसको कहते हैं अनन्य आश्रय, यह आठवां पॉइंट, अनन्य आश्रय मतलब भगवान के सामने जाकर कहे, परंतु संसार में किसी के सामने अपना रोना नहीं सुनाना चाहिए। किसको सुना है उसको 50 लोगों बताते रहते हैं। और नौवा कहा जाता है, ये नौवा तो दूसरा साथ में लग रहे हैं। मतलब जिस भी परिस्थिति में रहे मन में केवल भगवान को रखे, स्मरण पे ही है, लगभग ही है। और दसवा कहा जाता है, दसवा वो है प्रत्येक क्षण पर ध्यान रखे, कीप अ वॉच ऑन एवरी सेकंड, कि एक भी अव्यर्थ कालत्वम, कि एक भी क्षण जो है वो कृष्ण से अलग नहीं होना चाहिए। किसी न किसी रूप में श्रवण कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति के रूप में कोई ना कोई अंग से आपका जुड़ाव रहना ही चाहिए। आप एक तो सेवा कर रहे हैं, कुछ श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कोई ना कोई कृष्ण से युक्त कार्य निरंतर होना चाहिए। यह तो यह 10 बातें ये ध्यान में रखी जाए, उसको आगे के भविष्य में कहेंगे, पद्म पुराण की बात रहेगी। नौवा मैंने कहा था कि जिस भी परिस्थिति में रहे मन में केवल भगवान रहने चाहिए, तो वो लगभग स्मरण मतलब दूसरा नौवा एक ही दिख रहा है यहां पे। और दसवा कहा जाता है कि प्रत्येक क्षण पर दृष्टि आपकी रखे, इसलिए जो साधना कार्ड वगैरह होते हैं उसका प्रमुख प्रयोजन वही होता है कि ध्यान रखा जाता है कि कोई भी सेकंड बीच में छूट तो नहीं रहा है, कोई भी मिनट नहीं सेकंड कहा जाता है, कोई भी सेकंड ऐसा न हो। जैसे वो एक कथा में सुन रहे, आप देखना चाहिए कि आपका नाम चल नहीं रहा है क्या, अगर 5 मिनट भी अगर आप ऐसा हो गया मतलब आपके दिन में 5 मिनट ऐसे निकल गए कि अरे नाम याद नहीं आया आपको, कुछ भी हरे कृष्ण राम राधे हरि बोल, कुछ 5 मिनट आपके जीवन के ऐसे निकल गए जिसमें आपने एक भी नाम नहीं निकलाऊंगा, तो बोलते कि वो एकदम दुख होना चाहिए। 10 मिनट निकल गए तो बोले कि और दुख होना चाहिए, और 1 घंटा चले जाए तो बोले उस दिन उपवास करना चाहिए। 1 घंटा का कहा था ना, शायद 15 मिनट कहा था, मैं ठीक है मैं 1 घंटा चलेगा, 15 मिनट में बोलूंगा तो टेंशन आ जाएगा, कम से 1 घंटा आपका ऐसा चलेगा जिसमें आपने एक भी नाम नहीं निकला आपके मुख से, तो बोले बहुत ही भयानक चीज है। तो उस दिन तो बोले कि कुछ स्वेच्छा से कुछ दंड देना चाहिए अपने को, कैसे कैसे 1 घंटा चलेगा मेरा, तन क्या कहते हैं महाछिद्रम यन मुहूर्तम वासुदेव न चिंत है, क्या श्लोक, तन तन हानि महाछिद्रम, वही सबसे बड़ी नुकसान है, वही सबसे बड़ा दोष है, वही सबसे बड़ा मोह है, वही सबसे बड़ा भ्रम है जो क्षण श्री कृष्ण के बिना बीत जाता है। तो यह अगर रखते तो यहां पर कहा जाता है कि यह तुरंत आपको यह 10 बातें कुछ ही क्षणों में आपको, जैसे कल तो मैंने 6 महीने बोला था, परंतु कुछ ही दिनों में आपको तुरंत अनुभव होने लगा कि आप 3 गुणों का प्रभाव आप पर हो नहीं रहे। मतलब इस संसार में रह के भी जिस तरह से हमने कल शिल प्रभुपाद ऐसे कई भक्तों की जो चर्चा सुनी कि उस संसार में रहते, जैसे एक वो सुना था वो बिलू मंगल ठाकुर का है ना, गोविंद दामोदर महादेवी कैसे हो मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्याधिकम, मतलब गोपिया जब वहां पे माखन बेचने जाती तो कहती माखन बेचने, इतना ज्यादा श्री कृष्ण में मन उनका लगा रहता है कि माखन ले लो माखन ले लो माखन ले लो की जगह बोलने लगती गोविंद ले लो गोविंद ले लो गोविंद ले लो, माखन शब्द ही भूल जाती गोविंद ले लो। तो वहां बताते एक गोपी जो है ऐसा मटका लेकर खड़ी रही और कहने लगे, वो उसको पता नहीं किस रास्ते में जा रही है, वो जंगल की तरफ जा रही थी, वो जाना चाहिए तो शहर में बेचना चाहिए ना, जंगल की तरफ खड़ी हो गई बोल रही गोविंद ले लो गोविंद ले लो, फिर कुछ गोपी बोले कि अरे गोविंद नहीं माखन बोलो, तो बोले हाँ गोविंद ले लो, फिर से बोले गोविंद माखन नहीं गोविंद बोलो। तो इस तरह से वो श्री कृष्ण का स्मरण करते करते वहां पर रही और गोविंद ले लो, उस माखन का वो मटका जो है घड़े का अपने सिर पर रखा और देखते देखते फिर काफी देर बाद गोपी ने हिलाया उसको, तो उसने फिर वो मटका रखा और तब पता चला कि वो माखन ले लो बोलते हुए माखन का जो मटका अपने सिर पे रखा था उस अवस्था में 3 दिन और 3 रात बीत गए थे, उनको पता ही नहीं चला। इसको कहते मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। तो ऐसी तो ऐसी अवस्था भक्त अनुभव करने लगता है जब इन 10 बातों को ध्यान रखता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की शिल प्रभुपाद।